الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. الله تعالى ہمارے اس جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے. بیان شروع کرے اس سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ سب چاہتے ہیں. تو وعدہ کرو کہ ایک حدیث پر عمل کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے. ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی. لہذا آج سے ہی عادت بنا لو کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. بخاری شریف میں ایک قصہ آیا ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ پر چوکی داری کا کام سونپا. اناج تھا وہاں رکھا ہوا تو رات میں ایک چور آیا اناج بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا کہ میں صبح میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کورٹ میں لے جاؤں گا. وہ چور معافی مانگنے لگا. غریب آدمی ہوں, بچے والا ہوں, مجھے چھوڑ دو. میں نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صاف دل آدمی تھے, چھوڑ دیا وہ چور کو. صبح میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو ہریرہ تمہارے وہ چور کا رات میں کیا ہوا؟ یہ حضور کا معجزہ ہے, چمتکار ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کچھ کہا نہیں اور حضور وہاں تھے نہیں رات میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ قصہ بتلا دیا تو حضور نے ڈائریکٹ خود حضرت ابو ہریرہ کو سوال کیا کہ وہ چور کا کیا ہوا. وہ کہنے لگے کہ رات میں آیا تھا, میں نے پکڑ لیا تھا. وہ معافی مانگنے لگا, میں غریب آدمی ہوں, بچے والا ہوں, مجھے چھوڑ دو, میں اپنی آؤں گا. تو کہا میں نے چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول کے گئے, پھر آئے گا وہ چوری کرنے. دوسری رات پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکی کرنے لگے, وہی چور دوسری رات میں بھی آیا, اناج چوری کرنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ نے آج بھی اس کو پکڑ لیا ہے کہ تو تو عجیب چور ہے, نہ کہتا ہے اور پھر آتا ہے. آج تو میں تجھے پکڑ کے باندھ کے رکھ دیتا ہوں, صبح میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ میں لے جاؤں گا. دوسرے دن بھی وہ بہت معافی مانگنے لگا, بہت معافی مانگنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نرم دل آدمی تھے, دوسرے دن بھی چور کو چھوڑ دیا. پھر حضور نے دوسری رات صبح ہوئی تو پوچھا, ابو ہریرہ وہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور آج بھی وہ تو آیا تھا اور میں نے پکڑ لیا, پھر اس نے معافی مانگی تو میں نے چھوڑ دیا, وعدہ کر کے گیا ہے کہ اب نہیں آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولا وہ چور, پھر آئے گا. اس میں ڈبل چیز ہے حضور کی, ایک تو معجزہ کہ حضور کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑی, خود حضور نے سامنے سے سوال کیا, یہ اللہ کی طرف سے حضور کو بتلایا گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ پھر آئے گا, یہ بھوشیہ کی بات بتلائی, فیوچر کی, یہ بھی حضور کا معجزہ. پھر تیسری رات ہوئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی کرنے لگے تو تیسری رات میں وہ چور پھر آیا, اناج بھرنے لگا. آج بھی پکڑ لیا اس کو اور کہا کہ آج تو تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا. تو دو دن سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب نہیں آؤں گا, اب نہیں آؤں گا, اور پھر آتا ہے, اب تو بالکل نہیں چھوڑوں گا تجھے. اور صبح میں تجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ضرور لے جاؤں گا. تو آج وہ چور کیا کہہ رہا ہے, ابو ہریرہ آخری چانس دے دو, بس تین رات ہو گئے, اب تو کبھی نہیں آؤں گا, چھوڑ دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل آدمی تھے, تیسری رات نے بھی وہ چور کو چھوڑ دیا. लेकिन वो चोर ने जाते जाते एक बात कही, वो बात चोर थी, लेकिन उस बात को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्ची बतलाई, इसलिए ये हदीस हो गई। जब सुबह हुई तो फिर हुजूर ने पूछा, अबू हुरैरा क्या हुआ तुम्हारे चोर का? हुजूर आज भी आया था और बहुत पक्का वादा करके गया है कि अब नहीं आऊँगा, लेकिन उसने चलते चलते मुझे बात कही आज किसी भी रात में कि अबू हुरैरा तुमने मुझे छोड़ दिया आप तीसरी रात में भी, तो मैं तुमको एक बात सिखलाता हूँ। चोर कहने लगा कि जब रात को तुम बिस्तर पर सोने के लिए आओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता आएगा जो तुम्हारे घर की हिफाजत करेगा। ये उस चोर ने कहा किसी भी रात में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम्हें मालूम है वो चोर कौन था जो तीन रात से आ रहा था? कहा, हुजूर मुझे कुछ मालूम नहीं। कहा, वो आने वाला चोर शैतान था जो चोर की शक्ल सूरत लेकर के आता था, और शैतान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, वो जैसी चाहे ऐसी शक्ल बनावे, ये ताकत दी है अल्लाह ने, बस ये नबी की शक्ल नहीं बना सकते शैतान और जिन्नात, बाकी अलग 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 शक्ल बना करके चोर शैतान आते हैं जिन्नात आते हैं। जानवर की शक्ल में भी आते हैं, इसीलिए सांप के लिए एक अदब लिखा है कि कहीं घर में वो सांप आ जाए, खास करके सफेद रंग के इस तरह के, तो उसको मारने से पहले एक मर्तबा कहने का, अगर तू जिन्नात है ऐसी मखलूक है तो चला जाए यहाँ से वरना तुझे मार देंगे। फिर बाद लोग कहते हैं कि ज़रा नज़र हटा लेने की तो जिन्नात होगा तो गायब हो जाएगा, और नहीं तो सांप बाकी रहेगा, फिर वार्निंग देने के बाद भी नहीं जावे तो मार डाले, कत्ल करने की जरूरत, वो सांप की शक्ल में भी आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा वो तुम्हारा चोर कोई और नहीं था, वो तो शैतान था, शैतान जो चोर की शक्ल में आता था, और जो बात उसने कही कि रात को बिस्तर पर बैठकर एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, ये ऐसी बात है कि कभी कभी झूठा आदमी भी सच्ची बात बोल लेता है, ये ऐसी बात है, यानी जिसकी आदत थी हमेशा झूठ बोलने की वो भी कभी सच बोलता है, तो शैतान तो झूठा है नंबर वन, और जितने शैतान के एजेंट होते हैं वो भी बड़े झूठे होते हैं, लेकिन ये बात उसने सच्ची कही कि जो आदमी रात को बैठ अपने बिस्तर पर बैठकर एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आएगा जो पूरी रात उसके मकान की हिफाजत करेगा। इसीलिए ये बुखारी शरीफ की हदीस हो गई है शैतान की बात, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सच्चा बतलाया, इसलिए यह हदीस हो गई। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ, अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरत है, तो रात में सोते वक्त भी आयतुल कुर्सी पढ़ो, مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، سب پڑھے رات کو سوتے ہیں. اللہ اس کی برکت سے فرشتہ بھیجیں گے جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرے. اور دوسری چیز، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. پڑھو گے تو اس کا ایک فائدہ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سلامتی سے اس کو جنت عطا کریں گے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اس کو حفاظت میں رکھیں گے. دوسری نماز پر فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ظہر تک اللہ کی حفاظت میں، ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھی، عصر تک اللہ کی حفاظت میں، دوسری نماز تک اللہ حفاظت کریں گے. اسی لیے ایک عام ماحول بناؤ، سب کو سکھاؤ کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو. ٹوٹل کتنا ہو جائے گا؟ 6 مرتبہ ہو جائے گا. روزانہ 5 نماز پڑھتے ہیں، 5 نماز کے بعد ایک مرتبہ، یعنی 5 آیت الکرسی ہو گئے اور ایک رات کو سوتے وقت پر، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ پڑھو گے آج سے 6 مرتبہ آیت الکرسی. ابھی سے شروع کرو، گھر جا کے سوتے وقت آیت الکرسی کا معمول بناؤ. دوسری بات، مسلمان دینی بھائیوں، پریکشا چل رہی ہے، ابھی پریکشا ایگزام چل رہا ہے، امتحان چل رہا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کا جو امتحان آتا ہے وہ امتحان، اسکول میں بچے پریکشا اور ایگزام دیتے ہیں وہ پریکشا ہے. یہ سوچ ہماری تنگ ہے، چھوٹی سوچ ہے. وہ تو ایک بہت معمولی امتحان ہے. بچے 6 ماسک پریکشا دیتے ہیں، وارشک پریکشا دیتے ہیں، 6 ماسک امتحان دیتے ہیں، وارشک امتحان دیتے ہیں، اینوئل ایگزام ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹی پریکشا ہے، اس کے تو پیپر بھی لیک ہو جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں، سیٹنگ بھی ہو جاتی ہے، سب ہوتا ہے وہاں پر. وہ کوئی ٹینشن کے ایگزام نہیں. اصل ایگزام، پریکشا، امتحان اللہ تعالی حالات کے ذریعے لیتے ہیں. وہ اصل پریکشا ہے، اصل امتحان وہ ہے. اور ابھی پوری دنیا کے مسلمان ایگزام میں چل رہے ہیں، امتحان میں، پریکشا میں. ابھی اور یہ پریکشا کیسے ہوتی ہے جو اللہ لیتے ہیں، وہ بھی قرآن میں اللہ نے بتلایا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ اللہ کا ایگزام، پریکشا، جو اس وقت جو ہے امت پر ایگزام کے حالات ہے، پریکشا کے حالات ہے. پہلی پریکشا، پہلا امتحان کا پیپر، اللہ قرآن میں خود بتلاتے ہیں، خوف، ڈر کا ماحول، گھبراہٹ، ڈر کا ماحول. کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ ہے پریکشا، اللہ کی طرف سے امتحان ہے. سب جگہ ڈر 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 ڈر، خوف خوف، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، ایسے حالات چل رہے، امتحان ہے یہ. دوسری چیز، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک مرا، بھوک، یہ بھی ایک پریکشا، امتحان ہے. आप और मैं जहां रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जैसी हमारी जिंदगी है, खुदा का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हालात में। इस वक्त लाखों मुसलमान दुनिया के अंदर दो वक्त पेट भर के खाने के मोहताज चल रहे हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। ये भूख मरा, ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, परीक्षा है। बहुत सी जगहों के ऊपर खाना नहीं मिल रहा लोगों को, ऐसे संगीन हालात। बाद जगह पर मैं अल्लाह के घर में बैठा, मुसलमान रोटी और तेल खाके जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो भी रोटी कैसी, कंट्रोल में, जैसे राशन पहले मिलता था, रेशनिंग कार्ड पर इतने चावल इतने गेहूँ, इस तरह कंट्रोल सिस्टम पर रोटी। एक आदमी को एक रोटी या दो रोटी मिले और तेल मिल जाए कि रोटी और तेल खाओ जिंदगी गुजारो, दोनों वक्त, सालन भी नहीं, कोई चीज नहीं, बोरिंग लगे हुए हैं, पानी निकल रहा है, वो बोरिंग का डायरेक्ट पानी पियो, रोटी तेल खाओ जिंदगी गुजारो। ये हालात कैसे, आप और मैं जिस इलाके में है अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हालात है। तो ये भूख मरा, इस वक्त बहुत जगहों के ऊपर भूख मरा है। तो अल्लाह खुद फरमाए, ये दूसरी परीक्षा, पहली डर घबराहट, क्या होगा क्या होगा, दूसरी भूख मरा। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ। तीसरी परीक्षा माल दौलत में कमी, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ माल दौलत में कमी। ये तो क्योंकि हम भर भर तर तर जगह में रहते हैं, इसलिए हमें बंद नहीं है। हम लोगों के लिए अल्लाह की नियामत कैसी इस वक्त पर, याती हा रिस्को हा मिन कुल्ली मकान, सब तरफ से रोजी रोटी अल्लाह दे रहे, इसलिए हमें अनुभव नहीं। आप पेपर पढ़ते हो, जरा पेपर वाचो तो ध्यान से वाचो, हम वाचने की चीज नहीं वाचते, बाकी सब वाचते। रोजाना डेली पेपर में पैसे न होने की वजह से या कर्ज ज्यादा हो जाने की वजह से, बेकारी की वजह से आपघात करने का किस्सा जरूर होता है डेली, आप देख लो। और पूरे देश की बात नहीं, हर जिले में जो पेपर निकलते हैं, हर जिला वाइज, हर जिले के एतबार से पेपर में आपको ये समाचार पढ़ने को मिलेंगे, तो फिर पूरे राज्य में कितने आपघात, पूरे मुल्क में कितने आपघात, पूरी दुनिया में कितने आपघात, हिसाब लगाओ। डेली आपघात के किस्से आपको पढ़ने को मिलेंगे, और उसकी वजह कर्ज, ब्याज का दबाव, बेरोजगारी, बेकारी, मोंगवारी, इसकी वजह से लोग आपघात कर रहे हैं। और बास तो ऐसे न्यूज़पेपर में, अखबार में इससे आ रहे हैं कि पूरी पूरी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ लोग आपघात कर रहे हैं। वनक्सिम मिनल अमवाल, पैसों की कमी। और अपने मध्यम वर्ग में है, ये भी एक अच्छी चीज है। इसलिए कि अल्लाह बहुत माल देवे तो भी इंसान जो है दादागिरी करे अल्लाह के सामने। इस वक्त ऐसे लोग भी आपघात कर रहे हैं जिनके 300-300 करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ऐसे लोग भी आपघात कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर लॉबी के लोग, अभी कुछ दिन पहले पेपर में आपने सबसे बड़ा बिल्डर शहर का, उसने आपघात किया, मर गए अपने फार्म हाउस में जाकर के। बड़े बड़े मालदार लोग आपघात कर रहे हैं, मनी क्राइसिस, पैसों की तकलीफ। पूरे मुल्क में सबसे बड़ी जिसकी कॉफी शॉप, उसकी लाश भी अभी चंद दिन पहले नदी में से मिली। पेपर में पढ़ने की चीज पढ़ो इबरत के लिए। वनक्सिम मिनल अमवाल, माल की कमी, ये भी अल्लाह की तरफ से एक इस वक्त परीक्षा चल रही है, इम्तिहान चल रहा है। तीन पेपर हो गए, अल्लाह फरमाते हैं وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ। اللہ فرماتے ہیں بندو ہم تمہاری پریکشا لیں گے، امتحان لیں گے، ایگزام لیں گے۔ گھبراہٹ اور ڈر کا ماحول، بھوک مرا، مال اور دولت کی کمی، और चौथी परीक्षा वल अनफुस, तुम्हारे लोग, बेटे, बाप, भाई, दोस्त सब मरने लगेंगे, जान कम होने लगेगी। इस वक्त ये हो रहा है, मौतें भी हो रही है, मर्डर भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, बीमारियों में भी मर रहे हैं, मौत भी बहुत हो रही है। मिनल अमवाल वल अनफुस, जान, इंसान कम हो रहे, मर रहे हैं, ये बहुत हो रहा है इस वक्त दुनिया में। अच्छा तंदुरुस्त आदमी, और देखो मौत है ना, उसने अल्लाह से दुआ की थी, बाद रिवायतों में है ऐसे वाकिया, तो अल्लाह ताला ने मौत को तसल्ली दी कि तू घबरा मत, हम कोई ऐसा कारण बनाएंगे कि कोई तुझे डायरेक्ट गाली नहीं देगा, बुरा भला नहीं कहेगा। और यही हो रहा है, कोई अचानक अच्छा तंदुरुस्त आदमी मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, कोई मौत को गाली नहीं दे, बस अचानक अटैक आ गया, अचानक हेमरेज हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया। मौत की दुआ कबूल है, कोई उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, कोई ना कोई रीजन, कारण, वजह चलते रहे। और ये बहुत आम है इस वक्त। वलन खुश, ये पांच चार परीक्षा हुई, अच्छी तरह समझो, एक डर और घबराहट का माहौल, दूसरा भूख मरा, तीसरा माल दौलत की कमी, चौथा इंसान की जान की कमी। और इसी के अंदर ये भी है, जानवर मर जा रहे, जानवरों की मौत, थोड़े थोड़े दिन भर, कभी बर्ड फ्लू आता है, कभी फुलाना फ्लू आता है, मुर्गे मरते हैं, जानवर मरते हैं, मुर्गियों में बीमारी आती है, जानवरों में बीमारी आती है, जानवर मरते हैं, ये भी एक परीक्षा है अल्लाह की तरफ से। और पांचवी परीक्षा, वलनबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल जुऊ, वलनबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुऊ, وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ। फल और मेवे कम हो जाना, फल फ्रूट कम हो जाना। हमारे ये आम नहीं थे, इतने आम आते थे, अब कम आते हैं। हमारी केल पर पहले इतने केले आते थे, अब कम आते हैं। हमारी चिकूड़ी पर पहले इतने चीकू आते थे, अब कम आते हैं। हमारे यहाँ जामू इतने आते थे, अब इतने कम आते हैं। हर जगह ये बात आपको सुनने को मिलेगी। हमारी खेती में पहले एक रिंगे में इतना भात होता था, अब इतना नहीं होता है। इतनी सब्जी होती थी, अब नहीं होती, इतनी होती है। हर जगह ही आपको सुनने को मिलेगा। ये परीक्षा है, ये पांच तरह की परीक्षा अल्लाह ने बयान फरमाई कुरान में। ये असल परीक्षा, असल इम्तिहान। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ। परीक्षा चल रही है, अभी परीक्षा का माहौल चल रहा है उम्मत के ऊपर। और आपको मालूम है, स्कूल में परीक्षा चलती हो तो लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पढ़ने पढ़ने वालों को कोई काम नहीं करने देते। बेटा अभी परीक्षा की तैयारी करो, अभी काका मामा की शादी में भी नहीं जाने का, अभी परीक्षा है। अभी घूमने फिरने टूर मनाने भी नहीं, अभी परीक्षा। अभी खेल कूद भी नहीं, अभी परीक्षा। एक ही बात, परीक्षा। इम्तिहान। रात को सोने नहीं देंगे देर तक, बच्चों को वांचन करो, लेसन करो, परीक्षा की तैयारी करो, पूरा ध्यान इम्तिहान पर, परीक्षा पर। मुसलमानों, इस वक्त उम्मत पर इम्तिहान के हालात है, परीक्षा के हालात है। पूरा ध्यान हमें परीक्षा पर लगाना है। अभी ये टाइम नहीं है पार्टियों के, घूमने फिरने के, शादी ब्याहों में मौज मजे करने के, खेल कूद तमाशों के, ये टाइम नहीं है। ये परीक्षा की तैयारी का टाइम है। उम्मत इम्तिहान में चल रही है इस वक्त, और भारी परीक्षा है ये। और मैं आपको बड़ी जवाबदारी से कहूं, ये वार्षिक परीक्षा चल रही है, फाइनल एग्जाम चल रहे है। इस परीक्षा के लिए उम्मत को सारे काम छोड़ करके उसी की तैयारी में लगना पड़ेगा, तो जाके उम्मत परीक्षा में से पास होगी। मैं जुमेरात को एक जगह जा रहा था तो एक रोड के ऊपर शानदार मंडप देखा, डेकोरेट। पहले तो ये ख्याल आया कि दूसरे धर्म वालों का होगा, लेकिन वहां बोर्ड पड़ा, मुसलमान की फैमिली का नाम लिखा हुआ था कि हम हमारे यहाँ शादी में आने वाले सबको वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। मैंने कहा उम्मत परीक्षा में है और ये शादी के मंडप बना रहे हैं, खाने की पार्टी हो रही शादी की। बाप को मालूम है, जो परीक्षा के दिनों में खेल तमाशे में रहे, खाने पीने घूमने फिरने में रहे, वो परीक्षा में नापास हो जा रहे। किसों उम्मत को समझो और समझाओ कि उम्मत परीक्षा के हालात से गुजर रही है, और परीक्षा के हालात में पूरा ध्यान परीक्षा के ऊपर देना है। ये टाइम ऐसा नहीं है कि हम मौज मस्ती खेल तमाशों में लगे पर, ये उसका टाइम बिल्कुल नहीं है। और क्या तैयारी करनी है? सबसे पहली बड़ी तैयारी ये करनी है कि एग्जाम और परीक्षा लेने वाले को राजी करना है। और यहाँ तो सेटिंग ही नहीं होते कि परीक्षक के साथ सेटिंग हो जाए कुछ ले दे करके, यहाँ तो ऐसा भी नहीं। परीक्षक कौन है, इम्तिहान लेने वाले कौन है, एग्जामिनर कौन है, खुद कुरान में मौजूद है, उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाह। एग्जाम और परीक्षा खुद अल्लाह ले रहे हैं, अल्लाह की तरफ से परीक्षा के हालात है, एग्जाम के हालात है। इसीलिए एग्जाम लेने वाले, परीक्षा लेने वाले, इम्तिहान लेने वाले अल्लाह को राजी करो, ये पहला काम है करने का। परीक्षा की पूरी तैयारी, अल्लाह जरा भी नाराज नहीं होवे, इसका ध्यान रखो। सोचो, हर आदमी अपनी जिंदगी सोचे, जैसे अभी चरवड़ चली कि भाई हर एक के कागजात ओके करने हैं, तो हर एक अपनी फिक्र करे, मेरा आधार कार्ड, मेरा पान कार्ड, मेरा चिटनी कार्ड, मेरा जन्म दाखिला, मेरे जमीन के कागज, हर एक आदमी अपनी अपनी सोचता है और टाइम मिले दूसरों की मदद करता है। इस वक्त यही काम करना है, हम अपने कागजात देखें कि मेरी जिंदगी में कितने अल्लाह को खुश करने वाले काम है और कितने अल्लाह को नाराज करने वाले काम है, ये कागज पहले देखो। अगर मैं कोई काम ऐसा करता हूं जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, गुनाह का काम है, हराम काम है, बुरा काम है, तो पहली फुर्सत के अंदर वो काम छोड़ देने, तौबा करनी है। ये है परीक्षा की तैयारी कि इम्तिहान लेने वाले, परीक्षा लेने वाले, अल्लाह को राजी करना। और अल्लाह को कैसे राजी करेंगे, जितने काम से अल्लाह नाराज होते हैं इतने काम छोड़ो, तौबा करो। इसलिए कहते हैं ना, कोई छुड़वावे उससे पहले खुद छोड़ो, कोई छुड़वावे उससे पहले खुद छोड़ो। अभी पिछले हफ्ते आया कि भाई मोबाइल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, चार्ज मोबाइल के, फोन के चार्ज बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी तमन्ना ऐसी है, दिल चाहता है दुआ भी करूं अल्लाह से कि पहले जो फोन के भाव थे ना, वो भाव फिर हो जा रहे हैं। आज से 20-25 बरस पहले बाहर फोन करना हो तो 72 रुपये मिनट, अल्लाह करे वो दिन वापिस आ रहे, मेरी तो दुआ है। और ये इंटरनेट इंटरनेट सरकार वहां बंद करती है, वहां बंद करती है, परमानेंट बंद करो ना। मैं तो यूं चाहता परमानेंट बंद कर दे, मेरी आरजू और दुआ है। इसलिए कि एक सहूलत की चीज, जरूरत की चीज इस वक्त 95% गुनाह के काम में इस्तेमाल हो रही है। इंटरनेट को, मोबाइल को, व्हाट्सएप को, ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, 95% उम्मत गुनाह के काम में इस्तेमाल कर रही है, 95%। वो 72 रुपये जब भाव था ना टेलीफोन का एक मिनट का, तब मालूम है लोग क्या करते थे, बाहर फोन करना तो सलाम भी नहीं करे, डायरेक्ट जो बात बोलनी हो और ऊपर सेकंड पे देखते रहे, देखते देखते बात करें। वो टाइम फिर आना चाहिए दुनिया में। और लोकल कॉल भी वही 4-5 रुपए मिनट वाला होना चाहिए। इस वक्त खुराफा, बेहयाई, बेशर्मी, गीबा, गुना उसका सेंटर है ये इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक। कहते हैं गांव का उकड़ा, तो ये दुनिया का उकड़ा है ये इंटरनेट, सारा कचरा और गंदगी उसमें। तो हुकूमत हालात देख करके वहां नेट बंद किया, वहां बंद किया, वहां बंद किया, परमानेंट बंद होना चाहिए, मेरी तो ये चाह है। ताकि क्राइम खत्म हो जाए, गुनाह बंद हो जाए, बुराइयां बंद हो जाए। पहले क्या होता था कि बच्चों को रूम में बंद कर दो तो बच्चे डरते थे कि बाजी गोदी दे रहे, उस्ताद गोदी दे रहे, मास्टर रूम में पूरी दे रहे, लोग डरते थे। अब तो क्या गोंद तो सारी दुनिया के साथ थे वो रूम में बैठे बैठे, बाप ने समझा कि रूम में बंद कर दिया, वो तो सारी दुनिया में है रूम में बैठकर मोबाइल लेकर। कभी कभी मैं रात को देर से आता हूँ इधर उधर से प्रोग्राम से दीनी मस्जिद से, तो गांव के चोरों को देखता हूँ, चार रस्तों को देखता हूँ, रोड को देखता हूँ, वो नौजवान लोग सब लोग बैठते हैं, तो पहले बैठ के बातें करते थे, अब तो देखता हूँ कि 15 दोस्त बैठे होंगे, हर एक अपने मोबाइल में लगा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि घर से आने की तकलीफ क्यों लेते होंगे, घर में बैठ के ही वो अपने मोबाइल पे लगे रहते कितना अच्छा होता है। घर से निकल के आए, चौरे पर जमा हुए, और जो वो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के आपस में कोई बात नहीं, आकर हर एक अपने नेट पर लगा हुआ है, फिर जमा होने की जरूरत ही क्या है। हाल है इस वक्त पर, तो ये इम्तिहान के दिन चल रहे हैं मुसलमानों, परीक्षा के हालात है, और उसमें पूरा ध्यान परीक्षा लेने वाले अल्लाह को राजी करने पे लगा, अल्लाह राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए, ये पहला काम मुसलमान को करना। और जैसा मैंने कहा ना कि ये जैसे कि हर एक आदमी अपने कागज ठीक करो, अपने डॉक्यूमेंट ठीक करो, ये डॉक्यूमेंट ठीक करो अपने, कि मेरी जिंदगी में जितने गुनाह है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं मैं तौबा करूं उससे, और अपने परीक्षा लेने वाले अल्लाह को मैं राजी करो, ये है करने का काम इस वक्त। तो खुदा फरमाते وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ। ये 5 तरीके से हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, और चल रही है 5ों परीक्षा पूरी उम्मत के ऊपर, 5 एग्जाम चल रहे हैं। घबराहट का माहौल है, डर का माहौल है, भूख मरा भी है, पैसों की कमी भी है, जानों में भी कमी है, और फल अनाज में भी कमी है, ये सब हो रहा है इस वक्त। परीक्षा है अल्लाह की तरफ। मुसलमानों अपने को जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और जागृति की शुरुआत अपनी जात से करो। जागृति और जागृत होने का मतलब मैं अल्लाह को नाराज न करूं, मैं अपने अल्लाह को राजी करूं। हर लोग आके हालात 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 जहां देखो लोग जमा हो करके, ये हालात वो हालात ऐसे हालात कोई बात करते, लेकिन क्या करना वो कोई बात नहीं करता है, क्या करने का ऐसे हालात। तो भाई अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को खुश करो, और गुनाह छोड़ो, बुराई छोड़ो, ये करने का पहला काम है वो करो। और दूसरा काम मैं आपको बतलाऊं इस वक्त के हालात में जो करना है वो, अभी के रात में आपने सुना तो आमुन यतीम दाम करबा औ मिस्कीन दाम करबा, सेवा खिदमत रिलीफ राहत के काम करो, ये इस वक्त बहुत जरूरी है, किसी के काम आओ। ईमान यही है हमारा, दूसरों की हम खिदमत करें, सेवा करें। और देखो अच्छी तरह समझ लो, ये खिदमत सेवा चाकरी हर एक इंसान की, हर मखलूक की, वहां ये नहीं देखने का कि सामने मुसलमान है कि नहीं मुस्लिम है, हर एक की खिदमत करो। कोई दुखी आदमी है, बीमार आदमी है, भूखा आदमी है, उजड़ा हुआ आदमी है, परेशान आदमी है, उसकी सेवा करो, खिदमत करो। मुसलमान है ऐसा मत देखो, ना मुस्लिम नहीं है ऐसा भी मत देखो, कोई भी है, इंसान है, अल्लाह का बंदा है, उसकी खिदमत करो, सेवा करो। ये बहुत जरूरी इस वक्त के हालात में। मुझे एक दिन घर में से सुनाने लगे, मुझे बहुत दिल पे असर हुआ। कहा कि ये जो अपने यहाँ हड़पति है काम करने वाले, हमारे एक तरफ हड़पतियों का महल है, तो वहाँ से एक दो बुड्ढे आते हैं दोपहर में और आकर के वो आवाज़ देते हैं कि पूरी एक रोटलो हुको ने आखरू के कांदो आप ही। तो मैंने घर में कहा कि कभी मना मत करना, ना हो तो फौरन पका के लेकिन खिलाना उनको। देखो एक इंसान कितना दुखी है कि वो आकर के आवाज़ दे रहे कि मुझे एक सूखा रोटला दे दो और सालन कुछ ना हो तो प्याज अचार दे दो, मैं उसके साथ खा लूँगा। कितना वो दुखी इंसान होगा। और अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद है। सुन रचित है, देखो इबादत के जरिए से जन्नत में जाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुन्नत पढ़े, फर्ज पढ़े, नफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश पढ़े, अवाबीन पढ़े। इबादत के रास्ते से जन्नत जरा मुश्किल है। वो इबादत वाले बंदे और टीम होती और जमात होती, लेकिन ये खिदमत के रास्ते से जन्नत में जाना आसान भी है और शॉर्टकट रास्ता है। खिदमत और सेवा चाकरी ये जन्नत में जाने का आसान रास्ता और शॉर्टकट रास्ता, दो खूबी है इसमें, आसान भी है शॉर्टकट भी है। सेवा करो मुसलमान, बीमारों की, दुखियों की, मजलूमों की, परेशानों की, किसी तरह का भी इंसान खिदमत करो। और नियत क्या करने की? अल्लाह को राजी करना। क्या नियत करोगे? अल्लाह को राजी। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम खाना खिलाएंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह राजी हो जाए। बीमार को दवा देंगे, अल्लाह राजी हो जाए। दुखी की मदद करेंगे, अल्लाह राजी हो जाए। इसके लिए सामने वाला हमको आभार कहवे नहीं कहवे, थैंक यू कहवे ना कहवे, शुक्रिया अदा करे ना करे, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सामने वाला हमको बदला देवे, शुक्रिया देवे, कोई नहीं, हमें अल्लाह के लिए करना है। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, दिल पे लिखो इसको, अल्लाह को राजी करने के लिए सेवा चाकरी खिदमत करो, अल्लाह तो राजी हो ही जाएंगे। आड़े वक्त के ऊपर वो लोग आपका साथ देंगे। आड़ा वक्त आएगा ना तो उस वक्त वो आपके साथ होंगे। जिनकी सेवा की, जिनकी खिदमत की, जिनकी चाकरी की, जिनको राहत पहुंचाई, कभी आड़ा वक्त आएगा, बुरे हालात आएंगे तो आपके साथ आके खड़े रहेंगे और कहेंगे कि हम तो भाई भाई हैं, भले धर्म अलग है। इस वक्त क्या हो रहा है? हमसे ज्यादा वो लोग आगे हैं एहतजाज करने में। ये क्या चीज है? इखलास से अल्लाह के लिए करो, आड़े वक्त पर वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। हमारी नजर उस चीज पर नहीं, लेकिन ये क्या है? फाइनल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का गुलाम है। किसी पर एहसान करोगे तो आड़े वक्त पर उसको याद आएगा, शर्म आएगी, दो आंख की, दो आंख की लाज रखेगा। मैं तो यूं कहता हूं कि हमारे अखलाक इतने नीचे गिरे हुए हैं कि जो लोग हमारे घर में 40-50 साल से खेती में घर में काम करने आते हैं, आज तक हमने उनके दिल नहीं जीते, उनके दिल आज तक हम नहीं जीत सके। का ये हमारे यहाँ काम करता है, उसका बाप भी करता था, उसका दादा भी करता है, तीन पीढ़ी से वो हमारे यहाँ काम करते हैं खेती में घरों में, उनके दिल भी हम नहीं जीत पाए, इतने हमारे अखलाक नीचे, बहुत पीछे हम लोग ऐसे हालात में। इसलिए मुसलमानों इस वक्त ये काम करो, जहां भी तुम हो तुम खेड़ो तो खेती बाड़ी में जिन लोगों के साथ तुम्हारा संपर्क होता है, तुम टच में आते हो, उन लोगों के दिल जीतो। तुम कारोबार बिजनेस करते हो तो जो तुम्हारे संपर्क में कांटेक्ट में ताल्लुक में आते हैं उनके दिल जीतो। अमानतदारी दियानतदारी सच्चाई मामलात की सफाई के जरिए दिल जीतो उनके। ये काम करो, ये दो काम कर लो परीक्षा के हालात में, इंशाल्लाह अल्लाह परीक्षा पार करवा देंगे, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक काम परीक्षा लेने वाले अल्लाह को राजी करो, उसको नाराज करने वाले सारे काम छोड़ो, और दूसरा काम अल्लाह की मखलूक की सेवा करो, खिदमत करो, उनको राहत पहुंचाओ। जिस जगह भी आप हो, तुम्हारे टच में, तुम्हारे संपर्क में जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम आवे उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि उनके दिल जीत लो, अल्लाह राजी होंगे और आड़े वक्त पर वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इसकी बहुत जरूरत इस वक्त। और जैसा मैंने कहा भाइयों, बहुत अदब से आजीजी से काला वाला करके कहता हूं, परीक्षा के हालात में कभी ध्यान इधर उधर नहीं जाता, वरना नापास। परीक्षा के हालात में गुजर रहे, ये खेल तमाशों के वक्त नहीं है। साफ कह दूं मुसलमानों, ये राउंड वगैरह के चक्कर का समय नहीं है इस वक्त कि मुसलमान रातों को राउंड खेले, खेल खेले, पार्टियां करे, बड़ी बड़ी शादियां करे, उसका टाइम नहीं है। ये एग्जाम का टाइम है, सारी चीजें छोड़कर पूरा ध्यान परीक्षा में कैसे पास होना, जिस परीक्षा से इस वक्त उम्मत गुजर रही है। इसलिए फरमाया वबशिर الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون। صبر करो, उनको अल्लाह खुशखबरी सुनाते हैं। मुसीबत आए का हम अल्लाह के लिए और हम अल्लाह के पास जाने वाले हैं, अल्लाह इंशाल्लाह काम को बनाएंगे। रात है अभी 10 बजने आए, 12 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, ओ बहुत अंधेरी रात, लेकिन रात जितनी आगे जाती है इतनी आगे जाती है, सुबह सादिक से इतनी करीब होती है, इतनी पास होती है। और एक वक्त आता है कि रात खत्म, सुबह सादिक आ गई। भाइयों, अब जुल्म के अंधेरे खत्म होने का टाइम है और इंशाल्लाह फतह की इज्जत की सुबह सादिक होने वाली है। लेकिन ये परीक्षा में हमें भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। हम ये सोचे कि हम जैसे वैसे रहे, न अल्लाह आसमान से फरिश्ते उतारे ऐसे नहीं उतारा जाते, फरिश्ते ऐसे नहीं उतरते, ऐसे अल्लाह की मदद नहीं आती, वो काम करने पड़ते हैं तो अल्लाह की मदद आती है। अपने आप में चेंजिंग लानी पड़ेगी, बदलाव लाना पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेगी। जो गुनाह जिसमें है वो छोड़े और अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत कर ले रहे, अल्लाह हालात को सुधार देंगे, ये करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं ना, कोई छुड़वावे उससे पहले छोड़ो भाई। मोबाइल इंटरनेट है, जरूरत की चीज है, जितनी जरूरत इतना इस्तेमाल करो। ये क्या हर वक्त उसी में लगे हुए, इसको गुनाह का जरिया बनाया। फिर क्या होता है, जिन लोगों पर से अचानक छुड़वाया जाता है वो गांडे गांडे हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी तो खुराक ही यही, खाना पीना ही यही, सोना जागना ही यही। तो फिर क्या होगा कि इंटरनेट बंद तो पागल हो गए, डिप्रेशन में चले गए। इसीलिए कोई छुड़वावे, इससे पहले खुद छोड़ो गलत चीजों को। कि हमारे बाप दादा वड़ील बुजुर्ग पूछे नहीं, आज से 5 साल पहले कौन सी इंटरनेट थी, 10 साल पहले कौन सा नेट था, ये जी के आएंगे नहीं आज तक की उम्र में, और उनसे कौन सा काम रुका रहा कि हमारा रुक जाने का। बल्कि जितने बेकार है ना वो ज्यादा नेट में रहते हैं, काम से ज्यादा बेकार उसमें होते। इसीलिए कुछ चेंजिंग लाओ, अपनी जिंदगी में लानी पड़ेगी इम्तिहान के हालात के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता करना, अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम करना। सबसे बड़ी बात ये याद रखो, अपने परीक्षा दे रहे हैं अल्लाह को, हमेशा अल्लाह को कहने का, अल्लाह हम आफियत चाहते हैं, हम कमजोर बंदे, हम परीक्षा के लायक नहीं है, अल्लाह हमें आफियत में रखो, राहत में रखो, इज्जत में रखो। लेकिन उमूमी हालात इस वक्त परीक्षा के, इसीलिए अल्लाह को राजी रखो, अल्लाह को खुश रखो। और दूसरी चीज, अल्लाह की मखलूक की सेवा करो, मखलूक को राहत पहुंचाओ, इंशाल्लाह ये चीज काम आएगी। अल्लाह ताला हमारे इस जमा होने को, कहने सुनने को कबूल फरमाए, अपने रजा और अपने खुशनूदी का जरिया बनावे, अल्लाह आफियत का और रहम करम का मामला फरमाए। मुसलमानों कम से कम रोज 15 मिनट अल्लाह के सामने दुआ में लगाओ, नियत करते हो? कौन रोजाना 15 मिनट दुआ का वादा करता है कि मैं दुआ करूंगा, अपने लिए पूरी उम्मत के लिए। और अल्लाह हिम्मत दे रहे तो 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के दुआ करो, और उम्मत की तरफ से सदके भी निकालो, उम्मत की तरफ से अल्लाह उम्मत की तकलीफों को दूर करे, उम्मत में अपने भी आ गए, सदके भी निकालो, और सलातुल हाजा पढ़ पढ़ के दुआ करो। दुआ इंशाल्लाह इनकलाब लाएगी, इनकलाब अल्लाह दुआओं की ताकत से लाएंगे, अमल की ताकत से लाएंगे। दुआ करो खूब अल्लाह के साथ, दुरूद शरीफ पढ़ो। देखो दुआ मांगने का तरीका ये है कि पहले हाथ उठाकर अल्लाह की हमद करने की, तारीफ करने की, फिर दूसरे नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ने। الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے اہل ایمان کے ساتھ خصوصاً ہمارے پورے ملک کے ایمان والوں کے ساتھ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، راحت کا معاملہ فرما، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، اپنی حفاظت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم فرما، مکاروں کے مکر کو ختم فرما، فتنوں کے فتنوں کو ختم فرما، ناپاک سازشوں کو معطل فرما، ناپاک سازشوں کو بے نقاب فرما۔ اس ملک میں ہر ہر کلمہ پڑھنے والے کی، ہر ہر مسلمان کی ہر مسلمان کہلانے والے کی، مومن کہلانے والے کی، اے اللہ جان کی، مال کی، گھر بار کی، جائیداد کی، عزت آبرو کی، ہر چیز کی، اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، عدل و انصاف کا بول بالا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، جتنے کام آپ کو ناراض کرنے والے ہیں، حرام ہیں، اے اللہ اسے سچی پکی توبہ عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرما، پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، جتنے بھی ایمان والے قید میں ہیں، جیلوں میں ہیں، محصور ہیں، اے اللہ ان کو زندہ سلامت باعزت بعافیت چھٹکارا عطا فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، مظلوموں کو عزت عطا فرما، ظلم کے پنجوں کو ختم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.